हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 25। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, अव्यक्तोयम् अचिन्त्योयम् अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम् नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोयम् अचिन्त्योयम् अविकार्योयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनम् नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोयम् अचिन्त्योयम् अविकार्योयमुच्यते तस्मात्ते विदित्वेनम् नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोयम् अचिन्त्योयम् अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम् नानुशोचितुमर्हसि। शब्दों का अर्थ देखिए, अव्यक्त यानी अदृश्य, मतलब जो ऐसा हो जो दिखाई ना दो, अदृश्य जिसको हम आंखों से देख ना सके। अयम मना यह आत्मा, जिसकी बात हो रही है भगवान उसी चीज को कंटिन्यू करके बता रहे। तो अयम का मतलब होता है ये, अब ये मना आत्मा जिसकी बात मैं पहले से करता आ रहा हूँ। वो एक तो अदृश्य है और अचिंत्य, चिंतन भी नहीं उसका किया जाता, मतलब इमेजिन नहीं किया जा सकता, अकल्पनीय, क्योंकि बाल का अग्रभाग ही इतना छोटा होता है, उसका 10,000वां हिस्सा कितना छोटा हो कोई इमेजिन नहीं कर सकता ना। तो अचिंत्योयम और अविकार्योयम, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, जन्म बड़ा बड़ा बूढ़ा कुछ नहीं होता, एज इट इज रहता। अविकार्यो आयम यानी ये आत्मा, उच्यते, उच्यते है ना कहलाता है, भगवान कह रहे हैं कि ये कहलाता है, क्योंकि दिखाई नहीं किसी ने तो फिर ये सिर्फ कहा जाता है। उच्यते मतलब जो शास्त्रों, गुरु साधु और शास्त्रों से हम इसके विषय में सुन सकते हैं, अपनी मर्जी से इसकी व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं, अदृश्य है, अविकारी है, अकल्पनीय है, इमेजिन नहीं किया जा सकता। तो फिर ये सिर्फ गुरु साधु और शास्त्र ही इसके प्रमाण दे सकते हैं। तस्मात इसलिए एवं इस प्रकार विदित्वा यानी अच्छी तरह से जानो, क्योंकि अब शब्द प्रमाण ही हमारे पास एक वास्तविक रियल सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो भगवान कह रहे हैं फिर आप उस शब्द प्रमाण पे को एक्सेप्ट करो ना, उसको जानो, क्योंकि आत्मा इतनी छोटी है और जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको हम कल्पना नहीं कर सकते, तो आप इसी तरह से उसको जानो ना। तस्मात एवं विदित्व है ना, इसी तरह से उसको जानो, विदित्व एनम इस आत्मा के विषय में। और तुम जब ऐसा जान लोगे तो फिर नानुशोचितम, फिर शोक करने के लिए अर्हसी योग्य नहीं है। अगर तुम्हें ये पता चल जाएगा आत्मा के विषय में, ये सब जान लोगे, फिर तो तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, यानी कि भगवान कह रहे हैं कि इतनी छोटी है, अविकारी है, इसके लिए शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका तो कभी खंडन होगा ही नहीं, इसको तो कभी कोई क्षति पहुंचेगी नहीं। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वास वासुदेवाया ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन्वैष्णवाश्च श्रीरूपं साघुजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। ग्रंथरा श्रीमद्भगवद्गीता की जय हो। द्वितीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें आत्मा के विषय में 9 क्वालिटीज बताई कि उसको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंच सकती। पहले भगवान ने कहा अच्छेद्योयम् अदाह्योयम् अक्लेद्योयम् अशोष एवच, कि उसको न काटा जा सकता है ना ही खंड खंड किया जा सकता है, मतलब ना काटा जा सकता है ना ही घोला जा सकता है ना जलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। ये चाह उसके बाद भगवान ने बताया अजो ये नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन, ये नित्य है इटरनल है सर्वगत हर जगह पर है स्थाणु वो सर्वव्यापी है लेकिन फिर भी स्थान में एक ही स्थान में रहती है अचल है और सनातन है। अब उसी चीज को भगवान अब ये बता रहे हैं कि जब इसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं तो भगवान कह रहे हैं अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, क्योंकि इस आत्मा को अव्यक्त यानी अदृश्य इतना छोटा कि किसी भी बड़े से बड़े मशीन से उसको नहीं देखा जा सकता और अचिंत्य अकल्पनीय उसको कल्पना भी नहीं किया जा सकता उसका चिंतन ही नहीं किया जा सकता कि कितनी छोटी है। अब जिसको देखा नहीं जा सकता जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता उसको मारा कैसे जा सकता है। अर्जुन को बोल रहे फिर क्योंकि ऐसा है अपरिवर्तनीय वो तो इटर्नल है वो कभी भी परिवर्तन उसके अंदर आता नहीं है सनातन है। तो फिर भगवान कहते हैं तस्मा देवा मेरित्वैनम, फिर तुम ये सब जान गए हो जब तुम अब जब तुम्हें मैंने ये सब कुछ बता दिया है तुम्हें ये सब के बारे में ज्ञान हो गया है तो नानुशोचित तुम्हारी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए उसके विषय में। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्म दृष्टि यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। जैसे पहले क्या बताया गया आत्मा के विषय में श्वेताक्ष उपनिषद के विषय में बताया था ना हमें श्रील प्रभुपाद ने बालग्रे शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सचानन्त्याय कल्पत। इमेजिन करो कि एक बाल के 10,000 में, नोक के 10,000 में हिस्से का जो 10,000वां हिस्सा होगा ना, वो है आत्मा का नाप। तो भगवान यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अब पहले ही बता दिया कि इतना छोटा है कि नहीं देखा जा सकता। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। केवल इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक शब्द उच्चारण किया है, उच्यते, जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है ना, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, ये सब कहा जाता है। किसने कहा? श्रुति के प्रमाण। यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी बता ना, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त और आत्मा के अस्तित्व को कोई नहीं बता सकता। किसी ने देखा थोड़े, किसी ने आत्मा को देखा ही नहीं है, तो सिर्फ शास्त्र बता सकता है ना, और शास्त्र प्रमाण इज रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। शास्त्र जो कह रहा है वही सत्य है, जो गुरु कह रहे हैं वही सत्य है। तो फिर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके अस्तित्व को और शास्त्र के अतिरिक्त और कहीं पर भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। अब डॉक्टर भले इस चीज को ना समझे, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, जो उनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, जिससे वो देख सकते हो, जिसको अनुमान लगा सकते हो, ये प्रमाण तो है, लेकिन वो शास्त्र प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। वो पहले रिसर्च करते हैं कि हाँ ऐसा है, शास्त्र को पहले पढ़ते हैं फिर रिसर्च करते हैं। अब आत्मा की रिसर्च कैसे करेंगे? आत्मा तो उनको दिखेगा ही नहीं ना। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोले, भले ये कितना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ही ज्यादा सत्य है अस्तित्व इसका, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए और दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई देख नहीं सकता। तो फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्मा है ही नहीं जब दिखती नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी इन आंखों से नहीं दिखती हैं, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। उसी तरह से आत्मा जो है वो भी नहीं दिखती है, लेकिन शास्त्र कहता है। अब जाहिर सी बात है, कुछ तो होगा डेड बॉडी में और लिविंग बॉडी में, एक तो फर्क है, बाकी आंखें वही होती हैं, हाथ वही होते हैं, पांव वही होते हैं, और सब कुछ, शरीर ऐसे का ऐसा होता है, हृदय भी होता है, बस खाली उसके अंदर आत्मा नहीं है। तो अब वो जो भले आत्मा का नाम भले एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये तो मानते ही होंगे कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो उसमें से निकली है ना, वरना जब तक ये इसके अंदर थी तब तक तो ये सही काम कर रहा था। तो शास्त्र कहता है कि वो जो निकल गई है वो आत्मा है, इसलिए भगवान ने कहा उच्यते तस्मा देवा मेदित्रम, क्योंकि ये कहा है जो प्रामाणिक व्यक्ति हैं, प्रामाणिक शास्त्र हैं, उसमें इसके विषय में बताया गया है। तो वेदित्वायनम, उसको आप जानो, उसको ऐसा ही जानो, क्योंकि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, लेकिन जो उच्च प्रमाण है, महायनो ये न गता सुपंथा, जो महाजनों ने बताया है, जो शास्त्र ने बताया है, जो गुरु ने बताया है, जो प्रमाणिक शास्त्र बताते हैं, उसे हमें एक्सेप्ट करना होता है एज इट इज। तो कोई भी, अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर एक मिसाल बता रहे हैं कि कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व के को अस्वीकार नहीं कर पाता। यानी कि अब किसी को कोई पता थोड़े है कि यही मेरा पिता है, लेकिन माँ ने बोल दिया तो हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ ये माता, ये पिता है, क्योंकि माता ने बताया है। अब पिता के स्वरूप को जानने के लिए साधन एकमात्र प्रमाण माता है। अब एक दफा श्री प्रभुपाद से किसी ने बोला कि अगर माँ सही नहीं बताए तो, माँ रॉन्ग बताए तो, अब तरीका यही है, अब माँ ने रॉन्ग बताया तो माँ प्रमाणिक शास्त्र नहीं है ना। अगर माँ, मतलब कोई ऐसा होता है कि वैसे तो माता को सही सही बता देते हैं, जो पतिव्रता नारी अपने पति के अतिरिक्त और किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन उसी तरह से जो शास्त्र प्रमाणिक होते हैं वो केवल कृष्ण की बात बताएंगे। इसका मतलब है हमें सिर्फ और सिर्फ प्रमाणिक शास्त्रों की ओर ही जाना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ बता रहे श्री प्रभुपाद जी, जो सही वाली माता है वो अपना सही पिता बताए। तो हमें भी श्रीमद् भगवद गीता साफ साफ हमारे पिता की ओर लेकर जा रही है, और श्रीमद् भगवद गीता क्या बताती है, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही हमारा सब कुछ पालन पोषण करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर जब वही भगवद गीता हमें ये बता रही है कि आत्मा हो आप, तो जब हम उस बात को यकीन करें तो ये बारी मेरी प्रामाणिक माता हमेशा आपको सत्य बताती है। तो यहाँ कृष्ण प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। शास्त्र के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है, यानी कि जो सांसारिक ज्ञान है ना, एजुकेशन, उससे तो हम आत्मा को कल्पना भी नहीं कर सकते। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों में इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। वेदों के जो ये कथन है कि आत्मा चेतन है और चेतना हमें आत्मा के होने से हमारे शरीर में चेतना आती है, तो इस कथन को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अतिरिक्त आत्मा को जानने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ये बताया भगवान ने अव्यक्तोयम, ये अदृश्य है और अचिंत्योहम, इसको देखा भी नहीं जा सकता, इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती। और चौथी बात जो भगवान बता रहे हैं, अविकार्यो अयम, यानी इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी है। मूलतः अविकारी रहते हुए भी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। हालांकि वो अविकारी है, वैसे ही गुण है जैसे आत्मा के, जैसे परमात्मा के हैं, लेकिन फिर भी अणुरूप है। परमात्मा अनंत है, अणु आत्मा अति सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा छोटी है इतना, लेकिन उन आत्मा में और परमात्मा में क्वालिटीज वही है, क्वांटिटी का फर्क है। वो विभू है और वो अणु है। अणु आत्मा भगवान के जैसी क्वालिटीज रखते हुए भी भगवान के बराबर नहीं है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान की तुल्य नहीं हो सकता। अब अनंत आत्मा भगवान है, आत्मा उसका अंश है, तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, उसकी क्या कर सकता है, सेवा कर सकता है, क्योंकि उसी का अंश है तो उसकी सेवा कर सकता है, लेकिन उसके तुल्य नहीं हो सकता है। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भी वेद शास्त्र है उनमें यही चीज बताई गई कि आत्मा अणु है और परमात्मा विभू है, और अणु आत्मा का जो कि भगवान का परमात्मा का अंश है, उसका एक ही कार्य है कि वो भगवान की सेवा करे। और क्योंकि वेदों में बार बार इसी बात को दोहराया गया, श्री प्रभुपाद ने पहले कहा ना कि वही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया। कौन सा भाव? कि आत्मा अविकारी है, अचिंत्य है, नित्य है, अजो है, अजन्मा है, सब कुछ क्वालिटीज वही भगवान के जैसी है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी है, और लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है। उनमें फर्क क्या है कि वो अणु है, वो विभू। इस चीज को अलग अलग तरीके से बार बार दोहराया गया, और आखिर में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। कि अगर शास्त्र एक बात को बार 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 दोहरा रहा है तो उस चीज को समझने के लिए काफी है। ये बिल्कुल आवश्यक है कि अब देखो परम प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण, और इस दूसरे चैप्टर में जिसको सांख्य योग कहा गया है उसमें केवल यही तथ्य हमें बार बार समझाया। अब तक 16 में कहा ना, सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टान्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान ने कहा, तत्त्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी ये शरीर जो है वो खत्म हो जाएगा, और जो सत्य है, आत्मा है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। आगे बताया भगवान ने, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशिनम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। जो सारे शरीर में व्याप्त है उससे तुम अविनाशी जानो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। भगवान ने बता दिया ना, अभी स्टार्ट किया था 17 में, बता दिया कि उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद वापस से बोलता भगवान ने क्या कहा, 18 में अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्त शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्यस्य भारत अविनाशी अप्रमेय शाश्वत जीव भौतिक शरीर का अंत जो है वो अवश्यंभावी, भौतिक शरीर खत्म हो जाएगा और आत्मा कभी भी नाश नहीं होगी। और आगे भगवान ने कहा य एनम वेति हंतारम यशैनम मन्यते हतम उभयो उभौतौ न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो ये जान लेता है कि आत्मा ना किसी को मारता है और ना मरता है, तो फिर किसी के मृत्यु का कारण या कैसे मरा हुआ किसी को जान सकता है। आगे भगवान ने बहुत ही सुंदर रीति से 20 में बता न जायते मिर्जयते वा कदाचिन नायम पुत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। अब भगवान ने पहले बता दिया था ना कि इसको कोई नहीं मार सकता, फिर से भगवान ने कहा आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है ना ही, और फिर उसी चीज को आगे बताया भूत भविता वा न भूयः, कभी पास्ट में भी ऐसा नहीं हुआ, प्रेजेंट में भी नहीं हो रहा और फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा, अजो नित्य है शाश्वत। बता दिया फिर भी बोला अजो नित्य है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, इसको कभी भी शरीर के मारने पर आत्मा को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। और भगवान ने आगे बहुत दफा इसको बार बार क्लियर किया, बताया 23 में नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणी नयनम दहति पावक न चयनम खेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। आत्मा को कंडगण नहीं किया जा सकता शस्त्र के द्वारा और अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, जल के द्वारा गिलाया नहीं जा सकता और मारुत यानी हवा के द्वारा इसको सुखाया नहीं जा सकता। फिर उसी चीज को वापस से बताया अच्छेदोयम अविकार्योयम अच्छेदोयम अध्यायोयम अक्लेदोयम अशोष एव च नित्यः सर्वगत स्थाणो अचलो अयम सनातन। कि इस आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता है, इसे जलाया नहीं जा सकता है, इसे सुखाया नहीं जा सकता है, ये शाश्वत है, सर्वव्यापी, अविकारी है, अविकारी है, स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है। फिर भगवान अभी यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो एक ही चीज को बार 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 भगवान बता रहे हैं तो हमें उस चीज को उस तथ्य को स्वीकार करना है, क्योंकि भगवान परम प्रमाण है, कृष्ण परम प्रमाण है। फिर भी आज के श्लोक में क्या कहा कि मेरी खाली में थोड़े बोल रहा हूँ, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, कि सारे जितने भी वेद शास्त्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये अदृश्य है, अचिंत्य है, अविकारी है, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है, उसको कभी कोई क्षति नहीं पहुंच सकती, उसकी कभी समाप्ति नहीं हो सकती। तो फिर तस्मादेवम विदित्वैनम नानुशोचितम अर्हसि, फिर जब ये सब तुम्हें पता चल गया तो अब तुम्हारे लिए शोक का कैसे कारण हो सकता है। लेकिन अगर तुम ये नहीं मानते हो, अगर फिर भी तुम ये बात नहीं मानते हो, क्योंकि तुम अगर शास्त्र प्रमाण को नहीं ले रहे हो, आप अनुमान प्रमाण या प्रत्यक्ष प्रमाण को ले रहे हो, तो फिर तुम्हारे ख्याल में क्या होगा कि आत्मा जन्म लेती है और मर जाती है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये सोचोगे ना कि आत्मा जन्म लेगी और मर जाएगी। तो अगर तुम ऐसा सोचते हो तो फिर तुम्हें शोक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके विषय में भगवान हमें कल बताएंगे श्लोक नंबर 26 में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।